ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
குச்சு பாத் நீ பனேகி. ஜிஸ் சமய ஆப்கே அந்தர் யே போத் யே விசார் ஹோகா கி ராம ஹீ பிரம்ம ஹே, और उसमें ब्रह्मवत आपके निरतिशय व्यापक है, उस शब्द के साथ उसकी व्यापकता के साथ आप विचार करने लगेंगे तो आपको सर्वत्र सब में उसका तेज प्रकाश अपना व्यापक रूप से उसकी व्यापकता को समझें। इस प्रकार व्यष्टि से समष्टि की उपासना हो गई, समष्टि के लिए हो गया, व्यष्टि से समष्टि तक, समष्टि से इस प्रकार परिषद कहती है कि इन दोनों में प्रकृति को, जो हमारी प्रकृति है उसको अव्यक्तोपासना, असंभूति की उपासना, माने जिससे निराकार की उपासना, जिस पर विलय हो जाती है, प्रकृति विलय हो जाती है, अर्थात प्रकृति से विलय करके, प्रकृति को प्रकृति से विलय करते हुए, प्रकृति से रहित होकर, दोनों से जैसे कांटे से कांटा निकाल करके उसे दोनों को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार प्रकृति से प्रकृति में विलय करके अपने आप से, अपने मैं से मैं स्थिर होना, उसका जो स्वरूप है उसके लिए अमृतम प्राप्ति, वही अमृतत्व की प्राप्ति है नारायण, वही अमरता की प्राप्ति है। हमें उपासना करनी चाहिए, अच्छी बात है। उपासना के बिना मनुष्य जीवन मिला है तो मैं हमेशा कहती हूं कि ये उपासना के माध्यम से उपमाने ऊपर आसन, माने अपने आसन को, अपने स्थान को हमें संसार से हट करके भगवान के श्री चरणों में ग्रहण करना चाहिए। भक्ति के द्वारा यदि हम ये बात समझते हैं तो यही कहेंगे कि अपना स्थान, अपना आसन, हम कहाँ बैठते हैं। मैंने प्रथम दिन ये बात कही थी कि हम बैठते कहाँ, हमें इस बात का विचार, हम संसार में, संसारिक लोगों में, संसार में ही दिन रात बैठे रहते हैं या अपने आप को थोड़ा सा जगत से केवल दो अंगुल आप अपने को उठा करके देखें तो आप पाएंगे कि आप परमात्मा के बिल्कुल पास में हैं, परमात्मा बिल्कुल आपके पास है, आप परमात्मा में हैं, परमात्मा आप में हैं। जब आप जगत से केवल केवल दो अंगुल, यही दो अंगुल रस्सी थी ना, भगवान के दामोदर लीला जो हुई थी उसमें दो अंगुल रस्सी तो कम पड़ रही थी, गांठ बांधने के लिए यशोदा जी को सिर्फ दो अंगुल रस्सी कमी पड़ रही है, वो गांठ बांधना चाहती हैं पर भगवान को ये बंधन बंध नहीं रहा है, बोले कितनी रस्सी कम पड़ रही है, केवल दो अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। ये दो अंगुल रस्सी क्या है, संसार से सिर्फ दो अंगुल, थोड़ा सा अपने को अलग करके देखो, थोड़ा सा हटा करके देखो, अपने को संसार से हटा करके भगवान के, परमात्मा के सन्मुख करना ही, ईश्वर के सन्मुख करना ही, उस परमेश्वर के सन्मुख करना ही उपासना है। उपासना व्यष्टि के रूप से भी है और समष्टि के रूप से भी है, और व्यष्टि और समष्टि की उपासना को समझ करके, क्योंकि जब तक ये भेद समझ में नहीं आएगा, केवल व्यष्टि की उपासना में अपने ही शरीर को अपने ही ऊपर हम लगे रहेंगे, उससे हमारा क्या होगा, बोले हमारा यही होगा कि हमें उससे बहुत, इस बात को समझो, जैसे रामचरितमानस में ही प्रसंग है कि हनुमान जी अपने को मशक रूप बहुत छोटा भी कर देते, छोटे के रूप में उन्होंने इतना छोटा कर दिया कि मच्छर के समान मशक रूप धरी, मच्छर का रूप बना करके लंका में प्रवेश कर गए, इतना छोटा रूप भी बना लिया, व्यष्टिक रूप है, और अपनी पूंछ इतनी बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी उन्होंने कि ये उनका ऐश्वर्य का प्रसार भी है, इतना बड़ा विशाल रूप उसको धारण भी कर लिया, ये उनका ऐश्वर्य का विस्तार है। तो इस प्रकार व्यष्टिक उपासना के द्वारा हम यदि अपने ऐश्वर्यादि को बढ़ा भी लेते हैं तो उससे क्या होगा, और जो असंभूति है उस असंभूति के द्वारा अपने आप को इतना छोटा करके हम उस प्रब्रह्म संभूति के द्वारा हम अपने आप को इतना छोटा भी कर लें, असंभूति के द्वारा हम अपने आप को इतना ऐश्वर्य विशाल के साथ कर लें, तो व्यष्टिक रूप से ये विशाल जो ऐश्वर्य है अपनी महानता है, और उसके साथ व्यष्टिक रूप से बहुत छोटे से छोटे रूप में भी, मशक रूप एकदम छोटा रूप भी, इन दोनों के अपनी लघुता और अपनी महानता, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है, बीच के साथ जो दोनों को समन्वय करके जोड़ के चलता है, भगवान कहते हैं वो उपनिषद कहती है, श्रुति माता कहती है कि वो व्यक्ति अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। और जो उस कड़ी को नहीं जोड़ पाता है, दोनों को अलग अलग करने में ही लगा रहता है, उन लोगों को अविद्याजनिक क्लेश विनाश को प्राप्त होते हैं, अर्थात दुखों को प्राप्त होते हैं, जो केवल व्यष्टि में और समष्टि में ही उलझे रहते हैं। इसलिए हमको व्यष्टि और समष्टि में कहीं उलझना नहीं है, अटकना नहीं है, दोनों को साथ लेकर दोनों का समन्वय करके हमें आगे निकलना है। आगे यही निकलना है कि महान से महानतर महत्तर में भी वो है, और छोटे से छोटे अणु में भी वो है, अणु के रूप में भी अपनी व्यापकता को इस प्रकार सार्वभौम रूप से पहचान करके, मेरा जो उपासना के माध्यम से अपनी इस प्रकार की जो सार्वभौम व्यापकता है, उस व्याप्त रूप में स्थिरता को हम प्राप्त कर जाएं, और यही स्थिरता का नाम ही, क्योंकि अपने स्वरूप भूत की स्थिति हो जाना, उसमें स्थिरता आ जाना, यही आत्म साक्षात्कार है नारायण। इस प्रकार उपनिषद के इस मंत्र के माध्यम से जहां तक मैं समझ पा रही हूं कि यही एक संत लोग जो परंपरा से इस कार्य को बताते हैं कि यही है कि दोनों उपासनाओं को, एक का धर्म विनाशकारी है, नाश होने वाला है, धर्म वाला है, और एक जो दोनों असंभूति है, और वो असंभूति अव्यक्त प्रकृति है, और उसमें हमें विलय होना करना है। इस प्रकार सरल शब्दों में यही कहेंगे कि हमें परमात्मा की, चाहे हम सगुण की उपासना करते हैं तो तब भी हमको सगुण उपासना करते हुए भी उस उपासना में चिन्मय भाव रखना चाहिए, चेतन का भाव रखना चाहिए। मूर्ति पूजा आप करें, भगवान का दर्शन करें, जो भी आप व्यष्टिक रूप से करते हैं, पर उसके पीछे आपका भाव यही होना चाहिए। दूसरा उदाहरण इसको इस प्रकार समझेंगे कि जैसे कि सारे शब्द, जितने शब्द हैं, ये सब वर्ण पर निर्भर करते हैं, वर्णमाला में है। और कोई आदमी ये कहे कि मैं वर्णमाला को पढ़ करके, जैसे ना एक व्यक्ति था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, प्रभु मैं बहुत कुछ आपकी प्रार्थना तो नहीं जानता हूं, केवल इतना है कि आपके सामने मैं बारखड़ी पढ़ देता हूं, और इस बारखड़ी में आप, बारखड़ी समझते हैं, कौ का की कू कू के कई को कौ कंक, हम लोग हिंदी पढ़े हुए हैं तो इसलिए हमें बारखड़ी आती है, तो इसलिए कौ ख गौ घ, ये जो बारखड़ी है, कौ का की कू कू, कि मैं ये बारखड़ी आपके आगे पढ़ देता हूं, पर ये कौन सा शब्द कहां लगता है, कहां जुड़ता है, उससे क्या प्रार्थना बनती है, ये आप जानो, आपका काम जाने। तो कोई व्यक्ति केवल बारखड़ी पढ़ दे और उससे उसका काम बन जाएगा? बोले ये भी नहीं है, क्योंकि शब्दों में अथाह शब्द हैं, बहुत बड़े शब्द हैं। और कोई आदमी ये कहे कि मैं अथाह शब्दों को जान लूं बारह खड़ी पढ़े बिना, बारह खड़ी बिना, वर्णमाला समझे बिना मैं सारे शब्दों का ज्ञान कर लूं, सबका मुझे ज्ञान हो जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? चाहे वो कोई डिग्री प्राप्त करे, वो डीलिट करे या डॉक्टरेट करे, कुछ भी करे, वो सोचे कि मैं उसके पास कितने शब्द हैं, अनंत शब्द हैं, परंतु उसे बारह खड़ी पड़े बिना वो शब्द उसको प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए जितना महत्व बारह खड़ी का है उतना ही महत्व उन अनंत शब्दों का भी है। वो अनंत शब्द जो बने हैं वो वारखड़ी से बने हैं, वारखड़ी पढ़ के ही अनंत शब्द बनेंगे। और कोई व्यक्ति केवल ये सोचे कि मैं वारखड़ी पढ़ करके अनंत शब्दों को जानने वाला बन जाऊं, तो नहीं बन सकता, उसे वारखड़ी पढ़नी हो। इसलिए एक दूसरे के लिए महत्व है, उसी भांति संभूति का भी महत्व है और असंभूति का भी महत्व है। व्यष्टि की उपासना का भी महत्व है और समष्टि की उपासना का भी महत्व है। सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी। आप ये कहें कि निराकार को हटा करके केवल मैं साकार को पकड़ लूं, तो भी बात नहीं बनेगी। केवल साकार को पकड़ के मैं निराकार का तिरस्कार करूं, निरादर करूं, निराकार कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये बेकार की बात है, तो वो भी बात अच्छी नहीं। निराकार भी है और वो साकार भी है, वो सर्गुण भी है और वो निर्गुण भी है, वो कारण भी है और वो कार्य भी है, कारण के रूप में भी है, कार्य के रूप में भी है, निराकार के रूप में भी है, साकार के रूप में भी है, वो सगुण के रूप में भी है और निर्गुण के रूप में भी, वो व्यष्टि के रूप में भी है और वो समष्टि के रूप में भी है। इसलिए दोनों का समन्वय हो, दोनों साथ साथ, दोनों को समुचे, दोनों को साथ साथ करके हमें जीवन में चलना है। केवल बात इतनी है कि हमें साथ साथ, इसलिए जो सगुण रूप से उपासना करने वाले हैं उनका भी हमारे यहाँ बड़ा आदर है, और सगुण रूप में भी जो उपासना करते हैं ना, उसके दो हैं, एक सगुण रूप की उपासना करने वाले में भी एक सकाम है और एक निष्काम है, एक सकाम है और एक निष्काम है। अब सकाम और निष्काम में भी कोई ये कहे कि भाई निष्काम की करने वाले की बड़ी महत्ता तो है, भले गीता जी के आधार पर हो प्राणों के, निष्काम जो करता है उसका महत्व तो बहुत बड़ा है, परंतु साकार वाले का कोई महत्व नहीं, उसका तिरस्कार हो, ऐसी भी बात नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। इस पर एक प्रसंग आता है कि सुशैल वन पर एक शिला के ऊपर भगवान श्री राम बैठे हुए, लेटे हुए, उनके पास कौन बैठे हुए हैं? बोले उनके पास में बैठ, चरणों में तो बैठे हुए हैं हनुमान जी और अंगद जी, और भगवान श्री राम का जो सिर है वो किस में है? सुग्रीव की गोद में है। और सामने पास में बैठा हुआ है, बोले कौन? विभीषण जी। ये दृश्य जब देखा कि भगवान की ये कैसी माया है, जिसको जो भगवान के सकामी भक्त हैं, सकाम भक्त हैं, उनको तो भगवान ने बिल्कुल अपने पास, अपने कान के पास बिठा रखा है विभीषण जी को, और सुग्रीव के तो गोद में ही सिर रखा हुआ है, और जो भगवान के बिल्कुल परम भक्त हैं, जो दिन रात भगवान में ऐसी भक्ति जिनकी है हनुमान जी जैसे, उनको अपने चरणों में बिठा रखा, दूर किया हुआ है। इसलिए पूछ लिया भगवान से, कहा गोस्वामी जी ने कि कहा प्रभु ये कैसी आपकी लीला है? तो भगवान कहते हैं भाई बात यह है जो निष्काम है वो तो निष्काम ही है, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, वो पास है दूर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जो ये सकाम है मेरे कान के पास जो बैठे हुए हैं, ये भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। बोले क्यों? क्योंकि संसार में मेरा यश बढ़ाने वाले तो यही है, मेरी जय जयकार कराने वाले, मुझे पुजवाने वाले और मेरी महिमा को बढ़ाने वाले तो यही है, यही मेरी महिमा को, भगवान की महिमा को जितनी गाते हैं बढ़ाते हैं, ये जो भगवान का यश पुजवाते हैं, ये कौन है? बोले ये तो सकाम है। तो कहने का अर्थ मेरा ये है, सकाम का भी महत्व ऐसा नहीं कह सकते आप कि ये सब बेकार है। इसके पीछे भी एक भाव है, इस सकामता के पीछे भी, जैसे स्कूल में भेजने के लिए पहले पहले बच्चा स्कूल में आने की उसे आदत पड़े, उसके लिए उसे वहां खूब खेल खिलौने मिलते हैं और माँ कहती है तू स्कूल जाएगा तो मैं तुझे चॉकलेट दूंगी। तो बच्चे को चॉकलेट खिलाना या उन खेल खिलौनों के साथ खिलाना उद्देश्य नहीं है, उन खिलौनों के पीछे, उस चॉकलेट के पीछे जो उद्देश्य है वो तो ये है कि बच्चे को स्कूल जाने की आदत पड़े और वो वहां कुछ सीखे पढ़े और उसे विद्या की प्राप्ति, उद्देश्य कुछ और है। उसी प्रकार इस सकामता के पीछे भी उद्देश्य तो कुछ और है नारायण, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये भी बेकार है। तो कहने का अभिप्राय मेरा केवल इतना था कि हमें ये समझना होगा कि जो जिस रूप की उपासना कर रहा है, जो जहां जिस रूप से कर रहा है, वो हमको देखना ये है कि जो जिस रूप से कर रहा है, किसी का हमारे से निरादर न हो, चाहे वो साकार हो चाहे निराकार हो, परंतु हमको जो उपासना करनी है वो व्यष्टि के रूप में कर रहे हैं और समष्टि के रूप में कर रहे हैं। हमको अपनी उपासना को समझना है, यही समझना है कि व्यष्टि के रूप में भी वही है और समष्टि के एकत्व, एक प्रभु को, एक परमात्म तत्व का भाव करके, एक परमात्म दृष्टि रख करके, उसके पीछे हमारी जो दृष्टि होनी चाहिए, जो सोच होनी चाहिए, जो भावना होनी चाहिए, हमारी जो देखने की दृष्टि होनी चाहिए, उसमें एक ही तत्व रहना चाहिए, एक ही भाव रहना चाहिए, एक सर्वत्र मन बच्चती, सब के अंदर एक को देखने की हमारी दृष्टि में योग्यता होनी चाहिए। नेह नानास्त किंचन, या अनेक कुछ नहीं है, इस अनेकता में भी एक ही है, उस एक को ही देखने की हमारी दृष्टि, उस देख दृश्य को देखकर उस एक के साथ जुड़े, एक को हम देख पाए, एक के साथ जुड़ पाए, एक से हमारा साक्षात्कार हो सके, एक में हमारी साक्षात्कार से अभिप्राय, उसके साथ हमारी मन बुद्धि की स्थिरता बन सके, अपने अंतःकरण को शुद्ध करके। इसलिए मैं यही कहूंगी कि व्यष्टि की उपासना के द्वारा, व्यष्टि की उपासना के द्वारा जो सगुण साकार की उपासना है, उससे हमारी देहाशक्ति का त्याग हो, शरीर आदि के साथ देह गेह परिवार आदि की जो हमारी आसक्ति है, इस व्यष्टि उपासना से हमारी ये आसक्ति छूटे और समस्त की उपासना से अंतःकरण की हमारी शुद्धि हो सके। और जब अंतःकरण की शुद्धि होगी समष्टि की उपासना से, क्योंकि प्रकृति का विलय माना गया है, तो उससे सद बुद्धि के अंदर मन के द्वारा सद असत का विचार आएगा। जब सद असत का विचार होगा तभी सत्य पर हमारी स्थिरता बनेगी और असत्य छूट सकेगा नारायण। और इस प्रकार वो पात्रता प्राप्त होने पर ही हमारे जीवन में अमृतत्व की प्राप्ति हो सकेगी। यही अमृतत्व है इस मंत्र का, कि हमें इससे अमृतत्व की प्राप्ति होगी। तो व्यष्टि उपासना क्यों करनी चाहिए, बोले व्यस्ती उपासना इसलिए करनी चाहिए कि इसके द्वारा हमारे अंदर जो आशक्ति बनी है, वासनाएं भरी है, ये उपासना जो व्यस्तिक रूप से हम उपासना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, किसी गुरु की उपासना करते हैं, तो ये इस उपासना के द्वारा हमारी वासनाएं कम होनी चाहिए। न जाने कितने जन्मों की कितनी कर्म वासनाएं हमारे अंतःकरण में भरी हुई हैं, जब हम उनको अपने चित्त में ला करके उनके वचनों को सुनते हैं और उसके साथ अपना मन उनमें लगाते हैं, तो धीरे धीरे उन्हें चिन्मय भगवान की कृपा से वो धीरे धीरे वासना कम होती है और अंतःकरण शुद्ध आसक्ति छूटती है। संसार के साथ जो दिन रात जुड़े हुए हैं, दिन रात हमारी, मैं हमेशा कहा करती हूँ, सबसे बड़ा दुख का कारण तो हमारी आसक्ति है। जहाँ आसक्ति है वहीं बंधन है, और जहाँ बंधन है वहाँ भय है, याद रखना। जहाँ भय है, भयाक्रांत है, भय से डरा हुआ व्यक्ति है, तो भयभीत व्यक्ति कहाँ सुखी रह सकता है, कहाँ प्रसन्न रह सकता है, कहाँ आनंद रह सकता है। जिसके अंदर दिन रात भय बना हुआ हो, वो भय से तो भयभीत व्यक्ति तो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो हमारे अंदर आसक्ति है तो भय है, आसक्ति है तो भय क्या है, कहीं छूट न जाए, कहीं लूट न जाए, कहीं कोई छीन न ले, तो हमारे अंदर ये भय बना रहता है, इसे हम कैसे बचा करके रखें। तो भय किसको हम आसक्ति किससे है, बोले शरीर से आसक्ति है। तो शरीर से आसक्ति है तो देखो भाई, कहीं शरीर न बिगड़ जाए, चाहे शरीर कहीं खराब न हो जाए, इसको कोई कष्ट न हो जाए, तो हम शरीर को बचाने में लग जाएंगे, इसके रख रखाव में लग जाएंगे। और जब शरीर के इसके सुख सुविधा का, तो ऐसा करने पर फिर हम दिन रात इसी के ध्यान में रहते हुए हम और कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ ऐसी आसक्ति हो जाएगी घर के साथ, मैं अपने घर को छोड़ के चला जाऊंगा तो पीछे से क्या होगा, देहाशक्ति है, गेहाशक्ति है, और इस प्रकार की देह गेह आदि स्त्री पुत्र अन्य सब जो हमारी आसक्ति है, इन आसक्तियों के कारण बंधे हुए हैं, अपने आप को बांध रखा है। और इनके पीछे क्या क्या बना, क्यों बंधे हुए हैं, इसलिए बंधे हुए हैं कि भय लगता है कि कहीं ये नष्ट न हो जाए। पर याद रखना, सब कुछ नष्ट होने वाला है, इसलिए ये सब विनाशमान है, इसका धर्म है। ब्रह्मा भी नश्वरता को प्राप्त होते हैं, तो फिर अन्य की तो बात ही क्या है। इसलिए हमें ये विचार करना है, व्यष्टि की उपासना से अंतःकरण को शुद्ध करें। तो व्यष्टि की उपासना से परमात्मा की उपासना करते हैं, गुरु की उपासना करते हैं, शास्त्र के उनके गुरु के दिए हुए वचनों की आप विचार करते हैं, तो ऐसी उपासना के द्वारा आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। और अंतःकरण शुद्ध होने पर जब आप समष्टि में मन बुद्धि में स्थिरता आती है, तभी सद और असद के विचार से अब सत्य पर स्थिर, जो सत्य आपका स्वरूप है, वो कहीं से आया नहीं है, और उसमें स्थिरता आपकी बनती स्थिर ही है, परंतु वह आप जो ऐसे लगता है कि मैं उससे हट गया हूँ, कट गया हूँ, भिन्न हो गया हूँ, वो भ्रांति मिट जाती है, भेद भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं, जीवन अमृतमय बन जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देती हूँ, शेष चर्चा करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।